اب ظہیر صاحب آ جاؤ، ساتھی ظہیر صاحب ہیں، کل چلے جانا ہے تو اپنا واقعہ خود سناتے ہیں. جو صحیح صاحب تھے نا، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا پورا خاندان شیعہ تھا، کٹر شیعہ، شدید اشد شیعہ، اور زنجیر زنی کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا اس کی قبیل سے تھے. اللہ تعالیٰ نے بکرم کیا، آپ ان کی زبان سے خود سن رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے بڑے جید علماء حضرات تشریف فرما ہیں، اور ان علماء کے ساتھ جو محبت محسوس کی ہے میں نے اپنے شیخ کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو جوڑے رکھے جماعت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی اس پوری دنیا میں یہ تناور درخت بنے اور ان کے پھل کی چاشنی دنیا کے کونے کونے میں جائے. کیونکہ جب آپ لوگ، آپ حضرات تشریف لا رہے تھے، اور حضرت کے جس انداز میں اور جس خوشی سے فون آتے تھے میرے پاس کراچی میں، اور جیسے مجھے حکم فرمایا جاتا تھا آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کا، اور آپ کا یہ بس اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ قلب سے کیسے نکل رہی تھی باتیں، اور وہ پھر ہم نے کیسے محسوس کیا کہ واقعی جب آپ لوگ آئے اور وہ رات کیسے گزر گئی، وہ آپ ہی کے سامنے ہے اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور پوری رات جون سے وقت گزر گئی، عجیب کیفیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اور آپ سے درخواست ہے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور حضرت کی جوتیوں کے ساتھ ہم پورے خاندان کو جوڑ کے رکھے. واقعہ بڑا ہی عجیب قسم کا ہے، جیسے جیسے وقت گزر گیا ہے اور اس کا سوچ سوچ کے تو عجیب سا خیال آتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، اور کیسے ہو گیا. ہمارا پورا خاندان اہل تشیع تھا، بڑے بھائی سعید صاحب، ان سے بڑے حاجی خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج ان کی طبیعت ایسی ہے، ورنہ ماشاءاللہ باڈی بلڈر بھی تھے، مسٹر سیالکوٹ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور جو ماتم کیا کرتے تھے یہ سیالکوٹ میں، ایک مثالی سیالکوٹ کے وہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں، جنہوں نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تھا، روڈوں کے اوپر زنجیر زنی کرتے ہوئے، جلوسوں کے بیچ میں گھوڑے کے آگے ماتم کرتے ہوئے، اور وہ حاجی صاحب جو ہاتھ کا ماتم کرتے تھے وہ گوش اتنا دو دو انچ جو ہے وہ سوج جایا کرتا تھا، کیونکہ منت مانی ہوئی تھی انہوں نے بھی پوری عمر کے لیے، اور پھر انہوں نے بھی زنجیر کا ماتم کیا ہے، چھریوں کا ماتم انہوں نے بھی بہت دفعہ کیا تھا، تو ان کے بھی کافی نشانات تھے چھریوں کے، وہ مٹتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جب ماتم 10 محرم کو یا چہلم کو کیا جاتا ہے چھریوں سے، تو اس کے اوپر خاک شفا جس کو کہا جاتا تھا، کربلا کی مٹی، بس وہی لگائی جاتی ہے، اور اتفاق ہے کہ 3-4 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے زخم. صحیح سا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بے پناہ ماتم میں مشہور تھے، بلکہ ذاکر تھے، اہل تشیع کے، اہل شیعہ کے ذاکر تھے، اور یہ ماشاءاللہ عربی فارسی بھی کافی اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ خود لکھا کرتے تھے مرثیے دوڑے، اور میں اور یہ وہاں پر سیالکوٹ میں ہم مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بڑا پسند کیا جاتا تھا دونوں کو، خاص کر اخروٹا سیداں جو گاؤں ہیں وہاں پر 18 جیٹھ کو ہوتی تھی مجلس، اور 18 جیٹھ کو وہاں پہ گھوڑے کا جلوس نکلتا تھا، اور ہمیں سعید صاحب کو خصوصی طور پہ بلایا جاتا تھا، اور ہم وہاں پہ پڑھتے تھے، اور دنیا ششکار اور بہت رلاتے تھے ہم ان کو مرثیے پڑھ پڑھ کے. تو اس حالت میں تھے ہم، اس کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو ایمان ملنا بڑا ہی مشکل کام، اس لیے کہ آج تک ہم اپنے خاندان کے علاوہ حضرت کی جن پہ شفقت ہو گئی ہمارے خاندان پہ، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی شفقت ہوئی، پھر اس کے بعد آتا ہوں میں کہ حضرت کی جو شفقت ہوئی ہے ایسے ہی تواتر سے چڑھ رہی ہے ہمارے خاندان پہ، کہ پورا ہمارا گھرانہ صرف الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا. آج ہم تینوں بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی بھی اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کے ساتھ منسلک ہیں، اور اللہ کا بڑا یہ احسان عظیم ہے. لیکن ہم نے 83 میں میں آیا تھا جماعت میں، سلسلے میں داخل ہوا تھا، حضرت جی کی جوتیوں میں حاضر ہوا تھا، بڑے حضرت جی کے، اور اس سے پہلے صحیح صاحب ہوئے تھے، फिर इन्होंने सब खानदान को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की कर ली, और 83 के बाद मैंने बेपनाह मेहनत कर ली, बेपनाह कोशिश कर ली, अपने दोस्त अहबाब जो मेरे साथ छुरियां मारते थे और मातम किया करते थे, सियालकोट के भी थे, उनमें से एक का वाक्य आखिर में सुनाऊंगा। वो कराची में था और कराची में हम मातम करते रहे जब तक हम रहे। मैं सारी कोशिश कर ली, सईद साहब ने सब कोशिश कर ली, एक एक को दावत दे दी, कोई नहीं, बल्कि हमें उल्टा कह दिया गया कि आपके कलब पे स्याही आ गई है, मोहर लग गई है आपके कलब पे, आपने बाप दादा का जो मजहब है वो छोड़ दिया है। मानना तो दूर की बात है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे नजरे रहमत, नजरे शफकत, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, और इसका हमने मुशाहिदा किया, हमारी तकदीर बदल गई एक नजर में। तो वो हुआ इस तरीके से, वो मैं थोड़ा सा मुख्तसर सुनाते हुए फिर अपने असली मकसद की तरफ आता हूं कि ईमान मिला, सही साहब गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ईमान नसीब किया, हजरत की बड़े हजरत जी की जूतियों में गए, उसके बाद इन्होंने पूरे घर पे मेहनत की, फिर मेरे पे मैं अब खड़ा हूं, मैं जरा थोड़ा सा काफी कमजोर हो चुका हूं, शुगर का भी थोड़ा सा आर्जा है और उम्र की भी एक हद है, वरना मैं भी काफी बॉडी बिल्डर, कबड्डी शबड्डी में बहुत खेलता था और सेहतमंद था। सही साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बड़े थे लेकिन जसामत में जरा कमजोर थे, और जब ये दावत दिया करते थे तो बड़ी हमारी लड़ाई आपस में, बल्कि वही छुरियां मैं निकाल के ले आया करता था जो मैं मारता था, बड़ी आड़ी टेढ़ी बनी हुई थी मालूम है। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, खुदावंद कुदूस और हमें इस्तकामत दे। इन्होंने बहुत मेहनत की घर के ऊपर, खानदान के ऊपर। तो ये मुझे दावत देते रहे, मैं आखिरी एक रह गया, बाकी सब बहन भाई जो हैं ईमान ले आए और हजरत जी की खिदमत में पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो मजहब को छोड़ दिया और अल्लाह से तौबा कर ली, और मैं मानने के लिए तैयार नहीं था आखिरी दम तक। यहां तक कि मैं दुबई में था, हाजी साहब के पास था, और वहां पर पाबंदी है ये छुरियां मारने की, क्योंकि मैंने भी लाइफ टाइम के लिए मन्नत मान ली हुई थी घोड़े पे हाथ रख के पूरी जिंदगी छुरियां मारनी है। और उसमें दो वाकयात मेरे साथ ऐसे आए सियालकोट में ही, कि मैं बीमार हुआ और उस साल मैं छुरियां ना मार सका, तो जब मैंने छुरियां नहीं मारी तो मेरा कुत्ता काट गया मेरे यहां से, इतनी मेरा गोश्त की बोटी खा गया है, और मुझे कुत्ते से डर भी बड़ा लगता है, आज भी वो दूर खड़ा हो तो मुझे कपकपी सी शुरू हो जाती है। तो वो मेरे जितने अजीज और कारब हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने सब ने कहा देखा आपने इमाम अली मकाम को खून का नजराना नहीं दिया, तो आपके देखने खून भी बह गया और गोश्त भी आपका जो है वो कुत्ता खा गया। मैंने फिर कसम खाई दोबारा उसी हालत में, वो बातल में था जब मैं, कि अब नहीं मैंने छोड़ना। फिर मुझे एक इत्तफाक हो गया कुछ सालों के बाद, बड़ी सख्त बारिश हो रही थी, हाजी साहब वालदा साहब के साथ वो पूड़े से बन रहे थे, मैं छोटा पैंट मैंने पहनी हुई थी और कमीज उसकी अंदर थी पैंट के, तो मुझे हाजी साहब ने बोला कि जाओ वो उपले ले आओ, वो जो जलाते थे उस वक्त कोयले शोले और गोए शोले उसको कहते हैं, तो वो मैं गया जब स्टोर में से लेने, तो वो डाल के मैं ऐसे करके लेके आ रहा था, उसमें बिच्छू था, तो वो बिच्छू कहीं निकल के मेरे इधर कमीज के अंदर जाके उसने मेरे सीने पे डसा, यहां पर यहां डसा, और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हाजी साहब ने, खैर वाली साहब हमारे जो हैं वो मेडिकल में भी थे और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, काफी दिन मेरी परेशानी के गुजरे, काफी दिन जो है वो उसी परेशानी में गुजरे, और फिर तो मुझे यकीन कराया गया मेरे जो अहले तशी शिया जो हमारे जानने वाले थे अजीज व अकारब, उन्होंने कहा देखा आपके सीने के ऊपर उसने जो है वो डसा है, तो मेरे को भी फिर पक्का यकीन आ गया इस बात का। इसी उसमें मैं दुबई चला गया, दुबई जब मैं गया तो हाजी साहब के पास था, और जाते ही मैंने को दो या ढाई माह के बाद 10 मुहर्रम थी, और मैं बड़ा डरा हुआ था, मैंने कहा कि बिच्छू ने भी काटा था, कुत्ता भी बोटी ले गया, तो ये मैंने इनसे पूछा हाजी साहब यहां पर कहां पर होता है जुलूस वगैरह, कहां पर निकलता है। इन्होंने मुझे मना किया, कह लगे यहां पर बड़ी सख्ती है, शुरते वगैरह जो है वो पकड़ के ले जाते हैं, छुरियां छुरियां ना मारना, ये रानियों का मामला है, यहां पे मैं भी चला जाता हूं, मजलिस सुन के आ जाएंगे। अब इन्होंने तो इनकार कर दिया, तो मैंने अपने तौर से पूछ पुछा के सारा मुझे पता चला पार दुबई में है, और वहां पर 10 मुहर्रम को वो जुलूस तो नहीं निकलता लेकिन इमामबाड़े के अंदर ही वो छुरियां छुरियां मार लेते हैं। मैं गया, मैं खूब छुरियां मारी मैंने, मार के मैं खूनों खून होके जब वापस आया तो हाजी साहब का रंग उड़ गया और मुझे कहने लगी ये क्या कर आया, बच के कैसे आ गया, शुरू से तुझे पकड़ के क्यों नहीं ले गए। और मैंने कहा जी मैं इमाम अली मकान को खून का नजराना दे के आए हूं, अंधे हो गए होंगे सुरते। इन्होंने कहा तो मेहरबानी कर अब जा नहा हूं जाके और जल्दी से ये कपड़े छपड़े उतार। मैंने कपड़े उतार के हाजी साहब को कहा, मैंने कहा कि ये किसी उसको लॉन्ड्री को दे देना। उन्होंने कहा जाओ परे फेंक आग लगा मुझे पकड़ के ले जाएंगे सुरते जोन से, ये खून आलूद कपड़े तुम्हारे। इस हद तक हम डूबे हुए थे इस गलाजत में। फिर जितने साल मैं दुबई रहा हूं, हाजी साहब यहां पे मौजूद हैं, गवाह हैं, मैंने कोई साल नागा नहीं किया। छोटा बचपन से मैं ब्लेड मारता था सीने पे, बचपन से शुरू किया था, और जैसे ही मैं बालग हुआ तो मैंने फिर छुरियों का मातम शुरू किया और हर साल मारता था छुरियां, कोई साल ऐसा नहीं था जाता। बल्कि सही साहब है, एक मैं आपको हंसने के लिए बतला दूं थोड़ा सा, कि ये भी बड़े अकीदतमंद थे, सब कुछ थे, तो मैंने उस वक्त उसको तलवार नमा वो छुरी कहते हैं, आज भी वो चलाई जाती है कि वो ऐसे नोके निकली होती हैं, वो मैंने बनवाई और वो मैंने मारनी थी। तो सही साहब को मैंने कहा, मैंने कहा जब मैं चार पांच मार लू ना तो मेरे से छीन लेना। अब ये बैठे हुए हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल इमाम अली मकाम या हुसैन मारो। मैं जनाब छुरियां जैसे ही मैंने मारनी शुरू की वो बहुत ज्यादा लग गई, मुझे पता था ये लगेंगी बहुत ज्यादा, ऐसी मैंने इस्तेमाल नहीं थी की। जैसे ही मैंने मारी ये पास ही थे तो मैं जब नहीं छीनी तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा छीन लो, मारो मारो मर जाओ इसी में मर जाओ। आज भी मैं इनको याद कराता हूं तो बहुत हंसते हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं हंस रहे हैं। तो मेरे भाइयों इस हद तक हम गलाजत में डूबे हुए थे। फिर इत्तफाक अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान अजीम फरमाया कि सही साहब जब ईमान ले आए, हजरत जी की जूतियों में चले गए। इनका अपना एक वाकया है, ये बाद में हजरत ने कभी इजाजत दी तो ये भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने फिर पूरे घर पे मेहनत की, फिर आखिरी मैं रह गया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कोई भी बात। तो 83 में, सन 1983 में इन्होंने मुझे एक खत भेजा लिख के, और वो खत भाई हैंड किसी के हाथ भेजा और उसको कहा कि ये जाके आज ही बहुत जरूरी खत है मेरे भाई को, ये पहुंचाना है आपने। मैं कराची में था, ये एयरफोर्स में थे, हॉकी प्लेयर भी थे और वारंट ऑफिसर थे ये एयरफोर्स में। तो वो खत मेरे तक पहुंचाया उस बंदे ने रात को 11 बजे। मैंने वो उसकी खिदमत वगैरह करके फारग किया तो वो खत पड़ा। उस खत का खुलासा जो है वो वही था, वही दावत थी। उसका मैं खुलासा आपको बतलाता हूं, वो ये था कि ऐ मेरे भाई, आप तो हाजिर ना हो सके, हमारे उस्तादों से ना मिल सके, तो आज इसको खुशकिस्मती जानिए और ये गोल्डन चांस है कि हमारे उस्ताद मोहतरम आपके कराची तशरीफ ले गए हैं, और आपसे दरखास्त है कि आप जाएं उनके पास, उनको मिलिए और अपना तारफ करवाना कि मैं शिया था, बल्कि हो सके तो मेरा बतला देना कि मैं उनका भाई हूं, ताकि हजरत जी की खसूसी आप पर तवज्जो हो और फिर देखना इंशाअल्लाह ताला कैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का दीदार होता है और किस तरह कब्रों में पड़े हुए शियों को भी देख लेना और आम मुसलमानों को भी। इसके बाद भी अगर कोई शक रहे तो कोई बैद नहीं, मैं भी जिंदा, आप भी जिंदा सलामत हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम भी जिंदा सलामत हैं। आपके दिल में कोई भी बात हो उस्तादों से कर देना, शर्त इतनी है कि उनकी महफल में जरूर जाना। फिर आगे कुछ वसीयत वो थी, नसीहतें थी कि बड़े अदब से रहना, बड़े अदब से बैठना और जाके देखना, फिर अपने कल्ब पे तवज्जो रखना, ये सारी बातें इन्होंने मुझे वही जो जुबानी मुझे दावत दिया करते थे वो खत के जरिए लिखी। और फिर आखिर में ये लिखा कि भाई मेरे, मैंने ये खत लिख के एतमाम हुज्जत कर दिया और आप तक ये पैगाम पहुंच गया। अब इसके बाद अगर रोजे महशर मुझे मेरे अल्लाह ने पूछ लिया कि जो नेमत उज़्मा, जो मेवा तुझे दिया गया था, तूने दूसरों तक क्यों नहीं फैलाया, तो मैं ये खत जो है वो रब्बे करीम के हां पेश कर दूंगा। मैंने वो खत पढ़ा, उस वक्त मुझे फिर गुस्सा आ गया, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये भाई पता नहीं क्यों नहीं जान मेरी छोड़ रहा, इतना अरसा हो गया, 3-4-5 साल हो गए हैं, आप मुझे खत डाल दिया। मैंने वो खत तकिए के नीचे रखा और रखने के बाद मैं सो गया। उस रात को मैंने ख्वाब देखा, उस ख्वाब में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हमारे घर में मेरे ही कमरे में नमाज अदा कर रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं। नमाज की अदायगी के बाद वो मेरे पास आए हैं और मेरे कांधे पे हाथ रख के कहा कि तुम्हारे दिलों के बुत तोड़ने के लिए मैं आया हूं। इतने में मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने फिर कहा कि ओहो, वही जो खत आया है ना, उसी के असरात हैं, वही तसव्वुरात मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। और ये सोच के अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं करवटें ही बदलता रहा और मेरी सोचें तब्दील होती गई। मैं यहां तक सोचने पे मजबूर हो गया कि जी एक दफा जरूर मिल लिया जाए ताकि मैं भी एतमाम हुज्जत कर दूं और भाई को फिर लिख दूं कि जी मैं मिल आया हूं, देख आया हूं, तो मेरे पे तो कोई असर नहीं हुआ, तो आइंदा से मुझे दावत ना देना। सुबह मैं उठ के एड्रेस लिखा था भाई ने खत में, टेलीफोन नंबर भी लिखा था जहां पे हजरत जी का क्याम था। मैंने उठ के अब सोचना सोचते डेढ़ पौने दो बजे तक मैंने फैसला किया कि जी मैं जाऊं। मैंने वहां फोन किया, उनसे मजीद मालूमात की, उन्होंने मुझे पूरी मालूमात बतलाई जिस शख्सियत ने फोन उठाया था। उन्होंने कहा इस तरीके से आ जाए, डिफेंस से आ जाए, काला पुल क्रॉस करें, आगे देखें एरो बने हुए हैं हमारे और इज्तिमा का वो लिखा हुआ है, और वो आते आते बंगला नंबर 10 मेरे ख्याल वहां पर आप आ जाए, तो वहां पर हमारा ये हमारे हजरत जी आए हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। मैं वहां चला गया, वहां पे पहुंचा जिस वक्त तो ये जोहर की नमाज हो चुकी हुई थी। अब सच्ची बात है, हमारे अबाव अजदाद में किसी को नमाज का पता ही नहीं था। सच्ची बात है, हमारे वाली साहब ऐसे पढ़ते थे, तीन वक्त खुद ही जाके पढ़ के आ जाते थे। उस मस्जिद में सिर्फ हमारे वाली साहब के अलावा कोई नहीं था, होता हम में से कोई भी नहीं था नमाज का तो सच्ची बात है, तसव्वुर भी ना, हम तो इसी में खुशफहमी में थे और मुकम्मल खुशफहमी में थे कि ये जो इमाम अली मकाम को हम साल के बाद अपने खून का नजराना पेश, और वो तो जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के सरदार हैं, आले रसूल हैं, तो हमारे लिए तो जन्नत तैयार पड़ी हुई है। अब मैं वहां पे जब पहुंचा तो ढाई बजे का टाइम था, ढाई बजे हुए थे। मैंने देखा वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, शामियाना लगा हुआ है बंगले के अंदर, तो मैंने एक शख्स पास गया, वो कुछ किताब खोल के बैठे हुए थे बुजुर्ग। मैंने उनसे पूछा जी आपके कोई हजरत साहब आए हुए हैं? उन्होंने कहा जी जी, बड़े आस्ता आस्ता बोले जी आए हुए हैं, आप कहां से आए हैं? मैंने कहा जी मैंने मिलना है उनसे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें तशरीफ रखें, अभी हजरत आराम फरमा रहे हैं, असर के वक्त उठेंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप कहां से तशरीफ लाए हैं? मैंने कहा जी मैं कराची से ही आया हूं। हाँ तो आप तशरीफ रखें, बैठ जाए, खाना खाया आपने, चाय शाय? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। मैं कोने में बैठा, फिर मैं आया उनसे, मैंने कहा जी असर कितने बजे होगी? उन्होंने कहा पौने पांच बजे होगी, ये नवंबर का महीना था, 12 तारीख थी, कराची में कुछ सर्दी भी होती थी उस वक्त हल्की फुल्की। तो मैंने उनसे जब पूछा कि असर कब होगी, तो उन्होंने कहा पौने पांच। तो अब पौने पांच मैंने सुना, पौने पांच, तो मैंने कहा अभी ढाई, तो मैंने कहा जी बस मैं बस ठीक है, मैंने देख लिया, जगह देख ली, बंगला ये, लोग ये, मैं भाई को कह दूंगा जी मैं होके आ गया हूं, अब दो ढाई घंटे कौन इंतजार करे। तो मैं वापस आ गया, अपने घर आ गया वापस। वापस आने के बाद फिर मेरी सोचें शुरू हुई और मैंने कहा कि अगर भाई ने पूछ लिया कि आपने हमारे हजरत जी को देखा था, उनसे मुलाकात की है, तो फिर एक कसर रह जाएगी, फिर आपस में वो शुरू हो जाएगी बात, तो क्यों ना एक दफा जाके देख ही लिया जाए, देख के वापस आ जाना। अब मैं जब दोबारा गया तो वो मगरिब का टाइम था, मगरिब की अजान हो रही थी और बाकी साथी देखा तो वहां पे जुम्मे गफीर था, वो जो 15-20 साथी थे, अब वो शामियाना भरा हुआ था, बंगला अंदर से फुल था, एक साइड से लोग वजू बना रहे थे, लोटे लेके पानी के, कुछ टूटियां लगी हुई थी। अब मैं वहां पे सोच में पड़ गया, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने कहा था असर के बाद, तो अब मगरिब के बाद मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा कि यहां पे कोई वॉशरूम है कोई ऐसा, क्योंकि मैं अपनी तरीके से वजू करना चाहता था और किसी को बतलाना भी नहीं था चाहता। भाई ने तो कहा था कि बतलाना, लेकिन मैंने कहा मैं क्यों बतलाऊं, किसी को नहीं कहना मैंने कि मैं शिया हूं। तो उन्होंने मुझे वॉशरूम का बतलाया, बंगले की बैक साइड पे वॉशरूम था, मैं गया वहां से, मैंने उसी तरीके से शियों की तरह वजू किया, पहले पैर धोए, वो जो दुआएं थी नादे अली पड़ा सब कुछ कर करा के मैं चुप करके साथियों में आके खड़ा हो गया और तकैया करके मगरिब की नमाज हाथ वजू मैंने पांव से शुरू किया और बस वो पांव से शुरू करके तो वो सर का मसा हाथ धोए और हाथ धोने के बाद आप मुंह धोया 3 दफा, बाकी कोई किसी किस्म का मसा नहीं। अच्छा तो उसके बाद नमाज में मैं तकैया करके हाथ बांध के मैं खड़ा हो गया, नमाज मैंने पढ़ दी मगरिब की। नमाज पढ़ने के बाद, अब इस बात का मैं बाद में बताऊंगा कि ये मैं भूल जाऊं तो मुझसे पूछना कि ये सारे मराहल क्यों हुए। अब मुझे समझ आई 30 साल के बाद, 25-27 साल के बाद, कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। साथियों में बैठ गया, नमाज पढ़ ली, मगरिब की नमाज हो गई। अब मैं सोच रहा हूं हर बंदा मुझे हजरत जी लग रहे हैं। मैंने कहा यही बुजुर्ग हैं, वो जो है सामने सवेर शाजिए हैं, उनको गौर गौर से देखूं। खैर वो नमाज के बाद वो लंबी नमाज यही नवाफल वगैरह शुरू हो गए और मैं बैठा हुआ सोच रहा हूं। अब मैंने सोचा मैं क्यों ना ईशा की भी नमाज आज पढ़ ही लूं, भाई साथ साथ ही पढ़ी जाती है ना, बाकियों ने नफल पढ़ लिए तो मैंने अपनी ईशा की भी नमाज जो सी है वो साथ ही पढ़ ली 4 रकात। वो पढ़ने के बाद मैं फारिग हुआ। अब आवाज आई अंदर से कि साथी जो है वो सफे सीधी कर ले। दूर से आवाज आई बंगले कमरे के बीच में से, बहुत ऊंची आवाज आई कि साथी सफे सीधी कर ले, जिक्र के लिए बैठ जाए। मैंने इनको जिक्र करते हुए देखा था कि ये ऐसा जिक्र करते हैं। अब वो जिक्र के लिए बैठ गए, मैं बैठा रहा बीच में। अब मैं आपको कसम खा के बतलाता हूं, सब कुछ होने के बावजूद, सारी बदतमीजियां और अल्लाह ताला माफ फरमाए बेअदबियों के बावजूद, मेरे पे एक हैबत थी कि मैं बैठे हुए, मतलब कि सोचा मैंने कि अब मैं निकल जाऊं, सारों की आंखें बंद हैं, लेकिन नहीं, मेरे कदम नहीं थे उठ रहे। मैं चुप करके बैठा रहा और देखता रहा, सब जिक्र फिक्र करते रहे। जिक्र के बाद मराकबा शुरू हुए, इनका मुझे नहीं था पता, ना भाई ने कभी जिक्र किया था, ये कहा था हम ये जिक्र करते हैं। तो जिक्र के बाद जब मराकबा शुरू हुए तो आवाजें जब आई, तो जब चले सैरे काबा, बाकी तो मुझे समझ ना आई, अहदियत तो मुअय्यत अकरवियत की तो समझ ना आई, तो जब कहा जी चले सब सैरे काबा, तो मैंने कहा लो जी बतलाओ ये क्या मेरा भाई किस जगह पे फंस गया है जाके। कहा जा रहा है चलो सैरे काबा, बैठे भी सारे इधर ही हैं और आगे भी बात है। यही मेरी सोचें जो है ना ये आती रही। जिक्र खत्म हो चुका। अब जिक्र खत्म होने के बाद वो फिर ये मराकबे में थे साथी, तो आवाज आई कि एक साथी अजान दे दे ईशा की। मैंने कहा लो ईशा की भी नमाज। बहरहाल मैं पढ़ भी चुका था फिर भी मैं खड़ा हो गया, ईशा की नमाज में भी मैंने नमाज पढ़ ली। पढ़ने के बाद अब मैं सोच रहा हूं या अल्लाह जल्दी जल्दी पता चले कहां से हजरत जी हैं, मैं मिल लूं और मैं मिल के भागूं, बहुत वक्त हो गया कभी टाइम देखूं कभी कुछ देखूं। इतने में फिर अंदर से आवाज आई कि जो नए साथी हैं बैत करने के लिए हजरत जी की, वो तशरीफ ले आए कमरे में। हजरत जी दूर कमरे में थे। अब यकीन माने अभी जैसे मैं पीछे बैठा हुआ था और डर डर के आया हूं कि साथी को किसी को पांव ना लग जाए, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो बेअदबी की धज्जियां बखेरता हुआ मैं लंबी लंबी टांगों से फलांगता हुआ जल्दी जल्दी कि जी मैं जल्दी जाऊं और हजरत जी को देखूं और घर जाऊं। मैं कमरे तक पहुंचा जिस वक्त, तो अब मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा जब, तो मेरा एक पांव ऐसे अंदर गया और दूसरा मेरा अभी बाहर ही था। कितने ही साथी पहले पहुंच चुके हुए थे और मेरी नजर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पे गई। अब जैसे ही मेरी नजर गई है आपके चेहरे मुबारक पे और आपने मुझे देखा है, तो मुझे 25-30-50 हजार वोल्ट की करंट पूरे जिस्म में दौड़ गई। सबसे पहले तो जारी तौर पे मैं देखा कि वही हस्ती सामने तशरीफ फरमा है जिनको रात को मैं अपने ख्वाब में देख चुका हूं, जिन्होंने मेरे कांधे पे हाथ रख के कहा था कि तुम्हारे दिलों के बुत तोड़ने के लिए आया हूं। अब जैसे ही नजर मेरी पड़ी है, मेरी सारी बदतमीजी बेहूदगी बिल्कुल कफूर हो गई और मैं खामोशी के साथ वहीं पे जगह मिली और मैं बैठ गया। मुझसे आगे कितने साथी तशरीफ फरमा थे जिन्होंने बैत करनी थी। अब इसके बाद मेरी दोबारा नजर जब हजरत पे पड़ी है, तो हजरत मुखातिब थे उन साथियों के साथ, उसमें मैं भी शामिल था। तो आपने सबसे पहले यही फरमाया कि देखो बैत जो है ये सुपुर्दगी का नाम है, गुलामी का नाम है, अपने आप को बेच देने का नाम है। तो आप अगर अपनी मर्जी से आए हो तो अच्छी बात है, और अगर किसी के कहने पे आए हो तो अभी भी आपको इजाजत है कि अभी भी आप जा सकते हो, बैत ना करो। ये लफ्ज के बाद फिर मुझे महसूस हुआ है कि जैसे हजरत सिर्फ मुझसे मुखातिब हैं, सिर्फ मुझसे, मुझसे इतनी दूर है जितनी दूर ये 8-10 लोग बैठे हुए हैं, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि सिर्फ मुझसे मुखातिब हैं। और मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ है और मुझे कहते हैं कि चले मेरे साथ आप। अब वही जो चले थोड़ी देर के पहले, थोड़ी देर पहले जिसका मैं अल्लाह ताला माफ फरमाए मुझे मजाक उड़ाया था कि चले सैरे काबा, अब मुझे इस हालत में नमाज का पता नहीं, जिक्र कभी दूर की बात नहीं है, सारी जिंदगी जंजीर मारने वाला बंदा पहले दिन उस हस्ती के कदमों में बैठा हुआ है और वो हस्ती मुझे कह रही है कि चले मेरे साथ और मैं चल पड़ो। मैंने महसूस किया कि मैं चल पड़ूं, मैं बैठा हुआ भी हूं, चल भी पड़ो, मैं साथियों की भी आवाज शरशराहट की बाहर सुन रहा हूं और हजरत के साथ हूं और मुझे जाके नजफ शरीफ में हजरत अली करमल्ला वजह के रोजे के ऊपर मुझे खड़ा कर दी। मुझे कहा चले मेरे साथ अंदर और देखें बड़े अदब का मकाम है, बड़े अदब के साथ ये मौलाए कायनात हजरत अली करमल्ला वजह हैं। तो मैंने देखा सामने एक नूर है, वो नूर नजर आया मुझे और जैसे मुझे कहा करीब हो जाएं बड़े अदब के साथ और दो जानू बैठने की कोशिश करें, तो मैं जैसे ही करीब हुआ तो मैंने महसूस किया है कि मेरी तरफ से चेहरा मुबारक फिर गया। जैसे ही चेहरा मुबारक फेरा है तो मैं जारो कतार रोना शुरू कर दिया है और मैंने उसी हालत में मैं ये सोच रहा हूं क्या मौला हम तो आपके गुलाम हैं, सारी जिंदगी आपकी औलाद के ऊपर हमने क्या क्या जो है वो अपने जिस्म पे छेदा है, हमने उस मोहब्बत का इजहार किया है, तो ऐसा मेरे दिल में आया या जिस वक्त, तो उसके बाद मुझे आवाज आई है कि रूह जमीन पर जिस कदर तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रुहजा से अहले तशी से पहुंच रही है और हमें अहले बैत को इतनी किसी शख्स से नहीं पहुंच रही। फिर मुझे कहा गया ले मोहब्बत का मकाम देख लें, आप जो मोहब्बत के दावे करते थे आप देख लें। बस फिर मैं रोया हूं जी, बेपनाह रो के मैं वहां पे, फिर मेरे पे शफकत फरमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली करम अल्लाह वजहों का मुझे दीदार हुआ और आपने मेरे पे शफकत फरमाई, मैं आपके कदमों में मुझे बिठाया गया और बिठाने के बाद फिर वहां से मुझे कहा कि चले आप मेरे साथ, और यही बैतुल्लाह का तवाफ जो होता हुआ मुझे दिखाया गया वहां पे, और मैं यहां पे भी था और वहां पे भी था। इसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वापस ले आए हजरत, वापस लाने के बाद मेरी आंख खुली है तो मैं रोए जा रहा हूं, मैं ही रोए जा रहा हूं और सब साथी मुझे ही देखे जा रहे हैं, तो हजरत ने मुझे कहा जज़ब से ऐसे अल्फाज बड़ी शफकत के बोले और मुझे कुछ सहारा हुआ। फिर हजरत ने बैत शुरू की इसी तरीके से, बिल्कुल बहीन ऐसे ही तरीका जैसे हजरत जी बैत लेते हैं ऐसे ही बैत ली। बैत लेने के बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने भी बैत कर ली, कोई नहीं था मुझे जानता वहां पर, खुदा की कसम किसी को सवाल ही पर कोई ना मेरा जानने वाला था ना मैंने किसी को तारफ करवाया था। बैत लेने के बाद हजरत जी ने नसीहत शुरू की, पहले तो कजाए उमरी का, सबसे पहले कजाए उमरी का बोला कि देखें कजाए उमरी जो है ये बहुत हर अपनी फिक्र करे और जितनी नमाजें कजा हो चुकी हुई हैं ये कोशिश करे कि हर नमाज के साथ एक नमाज की अदायगी कर दे। फिर फरमाया अल्लाह ताला मेरा मालिक मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अगर इसके दरमियान आप करते रहें अगर मौत आ गई तो वह बख्शने वाला है माफ करने वाला है, बहरहाल आप जरूर इसका ख्याल करें। यह कहने के बाद फरमाया हां जब कोई काफर ईमान लाता है तो उसके लिए पिछला माफ हो जाता है। फिर फरमाया कुछ थोड़ा रुक के कि हां उलमाए हक के नजदीक शिया भी काफर होते हैं, इसलिए जब शिया भी कोई ईमान लेके आए उसका भी पिछला सारा माफ हो जाता है। ये इरशाद फरमाए, बैत हुए हमें, फिर दूसरे साथियों को, फिर वो जो मैं गया था फिर मैं वापस नहीं आया, फिर मैं वहीं पे तीन दिन मैंने क्याम किया, मुझे नहीं फिर पता मेरी मोटरसाइकिल कहां खड़ी हुई है, वहीं पे मुझे हर कोई जो है वो साहिब बसीरत और साहिब कशफ ही नजर आ रहा था, हर साथी मैं कह रहा सब कोई नजर आता है, वो जब पता चला। और तीन दिन के बाद फिर हजरत जी जब तशरीफ ले गए तो मैंने फिर भाई को खत लिखा, वो खत उन्होंने भी संभाल के रखा हुआ है और मेरे पास भी संभला पड़ा हुआ है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र के साथ साथ भाई का भी बेपनाह एहसानमंद हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की और अल्लाह ने हदायत दे दी। अब मैं बतलाऊं कि ये मरहले क्यों, मैं अब मुझे समझ आई 20-25 साल के बाद कि मुझे क्यों इतने मरहलों के, मैं मगरिब के वक्त पहुंचा, जोहर में गया, फिर मैं वापस भाग आया, फिर मगरिब के वक्त, फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई, फिर साथियों में नमाज चाहे तकैया ही करके पढ़ी, जैसे भी पढ़ी बिठाए रखा मुझे। हकीकत बात है मैं आपको बतलाऊं, हम इस कदर खुदा की कसम मस्जिद में खड़े हुए हैं, गलाजत में भरे हुए थे, हम इस कदर गंदे, इस कदर गंदगी से भरे हुए थे कि इस काबल नहीं थे कि इस हालत में हजरत जी का ज्यारत हो जाती या हजरत जी के सामने मैं चला जाता। वो जो इतनी मरहलों के बाद मुझे साथियों में बिठाया गया, जरबें लगी, मेरे पे भी असरात हुए, मेरी तरबियत ये की गई, मेरी कुछ नहूसत खत्म की गई, करने के बाद फिर जब मैं हजरत के पास गया हूं तो जो मुझे 25-30 हजार वोल्ट की करंट लगी है, अगर मैं अचानक फौरन ही चला जाता तो शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाता, मैं बर्दाश्त ना कर पाता, मैं जो समझो। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जमात में लग गए, जुड़ गए। अब अगला वाक्य आपको सुनाए कि मेरे जिस्म के ऊपर बेपनाह काले काले इतने मोटे मोटे दाग थे, वो दाग देखने वाले यहां पे कई लोग साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने उसका मुशाहदा किया था उस हालत में, बेपनाह दाग इतने मोटे मोटे काले काले। आज भी अगर किसी शिया को आप देखें जो छुरियां मारता है, दाग खत्म नहीं होते, इतने मोटे मोटे बने हुए होते हैं वो बल्कि खुशफहमी में ये रहते हैं कि जी ये रोजे मैशर चमकेंगे, रोजे क्यामत रोशनी नूर की तरह चमकेंगे, ये इसी उसमें खुशफहमी में अल्लाह ताला माफ फरमाए कि वो दागों को बंदा बर्दाश्त करता रहता है। अब ईमान जब मिल गया, अल्लाह ने हदायत दे दी और फिर ऐसी हस्ती के साथ जोड़ दिया, तो अब मुझे वो दाग मेरे बहुत ही बुरे लगते थे। मैं अक्सर साथियों को कहता था कि काश के कभी ये खत्म हो जाएं, और जबकि मुझे यकीन था ये खत्म कहां से होने, ये कैसे इतने तो मोटे सीने के ऊपर इतने इतने मोटे ब्लेडों के निशान बचपन से लेके एंड तक, लेकिन मुझे बुरे लगते थे। और मुझे खुदा की कसम ये डर लगता था कि रोजे मैशर अगर ये पेश कर दिया गया मेरा जिस्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या जवाब, किस मुंह से जाऊंगा। यहां पर तो बतलाया जा रहा है प्याज और मूली खा के भी जो है वो मस्जिदों में ना जाए, इसकी बदबू फैलती है, तो वहां पर ये गंदे दाग जो आपकी औलाद के ऊपर मैं सारी जिंदगी। और एक और बात मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भाई ने लिखा था कि आप देखना कब्रों में पड़े शिया भी, तो इसी चकवाल का वाकया है। एक फैमिली गई थी वारंट अफसर की, कनीज फातिमा उसका नाम था, मशहूर 82 में आया था, उसमें अखबारों में भी आया था, तो वो पूरी फैमिली डूब गई थी समुन्दर के बीच में, उनकी लाशों को हम खुद लेके गए थे और इमरान मसूद साहब कल तशरीफ लाएंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उस वक्त मैं भी वहीं पे था और ये जो है ये हॉक्सबे के थाने में पहले गई थी, बिल्कुल मैंने कहा जी हम साथ थे और उस वक्त वो डेड बॉडियां लेके आए थे और उनको जाके हमने खुद बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ दफन किया था। और मैं अक्सर वहां पे जब मौका मिलता था चला जाता था और जाके बड़ी अकीदत से वहां पे मरसिया पढ़ाना, थोड़ा मातम कराना, थोड़ा सा जनाब अली नोहा पढ़ाना, तो बड़ी मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत और बड़ा जनाब इबादत गुजार समझ के आता था वहां पे। अब मुझे ख्याल आया इसके बाद कि मैं वहां जाऊं, वो देख के आऊं। अब उसकी हालत यह है कि मैं, मेरा ख्याल है जितना यहां से दंदा है इतनी दूर था मैं, तो मुझे तपश आनी शुरू हो गई थी और आग के लोह निकल रहे थे उसमें से, मैं वहीं से वापस चला गया। उसके बाद मैं गया उस कब्रिस्तान में, लेकिन वहां पर मशहूर है कि सहाबी रसूल है, लेकिन नहीं, हजरत जी ने निशानदेही फरमाई हुई है उसकी कि वो ताबी हैं, और उन्होंने खुद बताया कि मैं ताबी हूं, नेवल कब्रिस्तान है कराची में और ताबी हैं, बड़ी बड़ी हस्ती हैं। तो उधर मैं गया हूं, कई दफा गया हूं, उधर गए हैं, जाके होके आए हैं, लेकिन वहां से जब तवज्जो दी और देखा तो आग के शोले उठ रहे हैं उन कब्रों के बीच में से, जिन पे मैं जाके बैठ के सारी कई साल तक मातमी करता आया। अब ये निशानात इस कदर थे कि मेरे को बहुत तकलीफ होती थी ये सोच सोच के। और हजरत हर साल उमरे पे जाते थे, सारे वसाइल होने के बावजूद मैं इसलिए नहीं था जाता कि मैं जब एहराम बांधूंगा तो ये सारे नजर आएंगे और अजीब सा लगेगा, सारा जिस्म भी मेरा काला ही था, हकीकत बात है, देखने वाले यहां सब बैठे हुए हैं, मेरा कोई इतना फेयर कलर नहीं था, वो था बस समझ ले आप ही लोगों की तरह था। तो जब मैं उमरे पे जब बड़ी दफा सोचा, अखीर मैंने अब ये तय पाया, मैंने कहा कि ऐसा ना हो इसी गम और फिक्र में इस नेमत से महरूम रह जाओ, करो तैयारी। अच्छा एक और भी मुझे खुदा शाहिद है कि यह भी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी करूं और तैयारी के बाद मेरा बुलावा ही ना आए, क्योंकि मुझे याद आता था कि हम क्या क्या करते रहे हैं सुहाबा इकराम पर और अजवाज मुतहररात के ऊपर और औलाद रसूल के ऊपर, तो ये देख के मैं कांप जाता था। आखिर मैंने 2005 में तैयारी की, हजरत मेरे साथ जा रहे थे, डिफेंस जा रहे थे, हम अकेले थे हजरत और मैं। मैंने बड़ी हिम्मत करके हजरत से कहा, हजरत मुझे इजाजत है मैं उमरे पे जाना चाहता हूं। फरमाया मेरी जान 100 दफा चलो। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा हजरत से इजाजत मिल गई, इंशाल्लाह ताला सारे रुकावटें दूर हो जाएंगी। मैंने तैयारी शुरू कर दी, तैयारी शुरू की उमरे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल की 15 तारीख को 2005 15 अप्रैल को पूरी जमात उमरे के लिए रवाना हो गई कराची से, और मैं और मेरे समेत कुछ साथी यहीं पे बैठे हुए हैं, जिनमें मियां रियाज साहब, मदजिला वाली भी अमीर जमात लाहौर, ये भी शामिल हैं। ये इनकी अहलिया, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। ये भी ये कराची रुक गए किसी वजह से, कोई टिकट नहीं हुआ कन्फर्म, और मेरा जो है पता नहीं वीजा नहीं था लगा, कुछ मुझे याद नहीं, बारह मैं भी रुक गया, ये भी रुक गए, बड़े परेशान हम। अब मियां साहब बिल्कुल इत्मीनान से हमें दुरूद शरीफ कहें पढ़ो और बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं बड़ा खुश भी हूं और अंदर से मैं यकीन माने मैं कहूं इनको समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल मेरी वजह से ये भी रुक गए हैं। तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से भी राबता था वहां पर, तो तीन दिन के बाद हमारी सारे अल्लाह ताला ने हल कर दिए, और तीन दिन के बाद हम भी 18 अप्रैल को, यह सब सही बता रहा हूं तरीके 18 अप्रैल को यहां से कलीम साहब जो है वो पहुंचे वहां पे, और उन्होंने लेके हम सारे ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह हम चले गए, मक्का पहुंच गए, जद्दे पहुंचे, जद्दे के बाद मक्का पहुंचे, मक्के के बाद रात का वक्त था 2:15 बजे का, तो हम अपने होटल में पहुंचे, और होटल में पहुंचे तो आगे पता चला साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा खाना शाना तैयार है, और फरमाया कि हजरत जी ने फरमाया जैसे ही आए खाना खा ले, खाना खा के आराम करना है तो कुछ आराम कर लें, अगर नहीं तो फिर चले जाएं, रात का वक्त बेहतर है उमरा अदा कर दें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 18 और 19 की दरमियानी रात को उमरा अदा कर दिया हजरत मियां रियाज साहब के साथ, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, बड़ी शौकत इन्होंने फरमाई, ये साथ थे। उमरे की अदायगी के बाद वो यहां पे हैं बैठे हुए, मोहम्मद उमर साहब, नदीम साहब लाहौर वाले, उनकी फैमिली, कोई नहीं आई अभी, आ जाएंगे बाद में तशरीफ ले आएंगे, यहां साहब हैं। जब मैंने कराची में एहराम बांधा तो इनमें से साथियों ने देख लिया, वो निशान भी देखे, और बल्कि तकादा किया, खान साहब ये जरा दिखाओ तो हम भी सुनते आए हैं। मैंने कहा लो जी देख लो, और मेरे दिल से ये निकली, मैंने कहा कि दुआ करना मियां साहब, मैंने कहा दुआ करना अल्लाह ये निशान यहीं पे दुनिया में मिटा दे। उन्होंने फिक्र ना करो, बड़ी तसल्ली दी, मियां साहब ने भी तसल्ली दी, उमर साहब ने भी तसल्ली, फिक्र ना करो। एक अंदर एक फिक्र और परेशानी बेपनाह थी। बहरहाल चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम जी वहां पे उमरा अदा किया 19 तारीख को, और 19 को सुबह उमरे की अदायगी के बाद हजरत वहां पे तशरीफ फरमा थे, क्योंकि हमें टाइम हो गया, फजर की नमाज भी हमने वहीं पे पढ़ी। हजरत रुकने यमनी के सामने तशरीफ फरमा होते हैं, और वहां पे तशरीफ फरमा थे, जलवा फरोज थे, क्या क्या बातें करूंगा, ऐसी उसमें खुशी में मुझे इजाजत दे दो तो कुछ और भी बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल हजरत तशरीफ फरमा थे, हजरत से मुलाकात हुई, हजरत ने कहा जाओ आराम करो जाके, और एहराम वगैरह उतार दो, उमरा अदा हो गया, मुबारक दी हमें, हम चले गए। साथी इशराक के बाद आते हैं, हजरत भी इशराक के बाद तशरीफ लाते हैं, होटल में तशरीफ लाए, जिक्र फिक्र हुआ, और जिक्र फिक्र के बाद हजरत ने फरमाया कि जो साथी, मुझे आज भी लफज याद हैं, जो साथी रात को आए हैं वो जाके खामोशी के साथ सो जाएं चुप करके, और बाकी जिन्होंने उमरे पे जाना है वो तैयारी करें। तो हजरत का वहां पे ममूल था, पहले हजरत रोजाना उमरा किया करते थे, और अब ये ममूल बन गया था कि एक दिन छोड़ के खुद उमरा करते थे, बाकी साथियों को इजाजत थी कि जब मर्जी जाएं जितने मर्जी उमरे करें। तो जब मैंने पूछा साथी से, मैंने कहा कि हजरत ने हुक्म फरमा दिया सोने का, या मैं इजाजत ले लूं कि मैं तो फ्रेश बिल्कुल ठीक ठाक हूं? तो उन्होंने कहा हाँ ले लें आप। मैं हजरत जी के पास आया और हजरत जी को कहा हजरत जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, फ्रेश भी हूं, तो मैं आपके साथ उमरा करना चाहता हूं। तो हजरत जी ने इजाजत फरमा दी, वो उमरा 20 वाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी के साथ सुबह फिर उमरा भी अदा कर दिया। 21 का दिन खाली गया, अब 22 तारीख को जो है वो उमरे की अदायगी थी, तारीख मैं भूल रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि ये 22 और 23 की रात का है वाकया जो सुनाने लगा हूं। 23 तारीख को उमरे की उमरे पे जाना था हजरत ने दोबारा, तो 22 और 23 की रात का ये वाकया है कि कमरे में सोए हुए थे हम, तीन अफराद थे उस कमरे में, और मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब मैं दरखास्त करूंगा कि गौर से सुनना। वो ख्वाब इस तरीके से मैंने देखा कि हम जितनी जमात हैं जितनी जमात सबकी सब सफेद कपड़े पहन के बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हूं। तो मैं साथ वाले से पूछता हूं कि हजरत जी कहां हैं, हजरत जी बेग साहब कहां हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सामने गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में इजाजत लेने गए हैं, अगर इजाजत मिल जाएगी तो हम सबको लेके जाएंगे। तो अब ये बात सुन के ख्वाब के बीच में मेरे को फिर वो याद आ गया, मैंने कहा हो सबको तो लेके जाएंगे तो मैं किस हालत में जाऊंगा। इतने में मैं देखता हूं कि हजरत बेग साहब दामत व बरकातो हूं, जितने लफ्ज मैं तो आलम नहीं हूं, अल्लाह तबारक व ताला अपनी जनाब से बेपनाह तरक्कियां और बेपनाह अता फरमाए, तशरीफ ला रहे हैं मुस्कुराते हुए और अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए आके सारी जमात को कहते हैं चले सब चले, इजाजत मिल गई है। जैसे ही कहते हैं हजरत इजाजत मिल गई है सब चले और मैं आगे बढ़ता हूं और रोना शुरू कर देता हूं। तो हजरत मुझे पूछे आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा हजरत मैं ये रो रहा हूं कि ये मेरा जिस्म देखें दागदार, हजरत मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये मेरा जिस्म देखें दागदार, इस हालत में मुझे आप लेके जाने लगे हैं, मुझे शर्म आ रही है। तो हजरत देखते हैं, मैं दिखाता हूं बकायदा जिस्म दागों से भरा हुआ। तो हजरत देख के फरमाते हैं करीब हो मेरी जान, इधर ऐसे मुझे करीब किया, करीब करके मेरे ऐसे हाथ फेरा, फिर के कहने लगे लो सारे दाग खत्म हो गए हैं। तो मैं देखता हूं ख्वाब में कि दाग खत्म हो गए हैं। अब आगे हजरत से एक दफा मैंने पूछा था आगे की कैफियत, हजरत ने बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात गई थी बशमूल आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई थी। अब मैं जैसे ही मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दाग खत्म हो गए हैं सारे, तो मेरी आंख खुल गई, आंख खुली तो मैंने हाथ लगाया, क्योंकि वो तो हाथों में रड़कते थे ना, इतने मोटे मोटे से थे, पीछे देखा मैंने, मुझे ऐसे लगा कि जैसे नहीं है और मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी नींद में ही हूं। मैं उठा, उठने के बाद चुप करके, क्योंकि साथी सो रहे थे, उनके इकराम को भी मद्देनजर रखा और मैं वॉशरूम में गया। वॉशरूम में जाके मैंने लाइट जलाई, लाइट जला के शीशे में मैंने पहले सीना देखा कि बिल्कुल साफ, फिर मैंने कमर देखी बिल्कुल साफ, फिर मैंने पानी के छींटे मारे, जो हम सुनते हैं ना कि ख्यालों में छींटे, मैं खुदा की कसम हकीकतन छींटे मारे कि मैं कहीं सोच तो नहीं रहा, अभी छींटे मारे जैसे मैंने, तो हरम से 3:20 में तहज्जुद की अजान हो गई। जब अजान हुई तो मुझे यकीन आ गया पूरा कि मैं ये ख्वाब नहीं, ये तो हकीकत में सब कुछ हो गया। मैंने वहीं पे रोते रोते वजू बनाया, वजू बना के मैं हरम में चला गया, हरम में पहुंच के बैतुल्लाह को देख के रोए जा रहा हूं जारो कतार कि ये क्या हो गया। उसमें यह हुआ कि मैं रोए जा रहा हूं और मैं ख्वाब भूल गया, ख्वाब में भूल गया कि मैंने देखा क्या है, निशान तो मिट गए लेकिन सारे ही भूल गया मैं कि कैसे मिटे, क्या हुआ, ये सब कुछ मैं भूल गया। भूलने के बाद मैं मायूस होकर बैठा हूं कि मैं अपने हजरत को क्या बतलाऊंगा कि क्या देखा, कैसे ये निशान मिटे हैं, आपने कैसे ये दस्ते, वो सोच रहा हूं नहीं याद आ रहा, बिल्कुल नहीं याद आ रहा। इसी में नमाज फजर अदा की, हजरत जी तशरीफ ले आए, फजर की नमाज के बाद उसी तरीके से बैठे रहे और मैं यही सोचता रहा या अल्लाह मुझे याद आ जाए, मैं अपने हजरत जी को ये ख्वाब सुनाऊं मेरे साथ हुआ क्या, नहीं याद आया। अब जिस वक्त वापस आ गए, जिक्र फिक्र हुआ, जिक्र फिक्र होने के बाद उमरे के लिए फिर हजरत के साथ जाना था। अब वो उमरा 23 तारीख का हजरत के साथ जमात ने अदा किया, मैं भी साथ साथ रहा, रोए भी जा रहा और बल्कि हजरत को याद भी आ गया आ जाएगा अभी भी इंशाल्लाह ताला कि मैं इतना रो रहा था कि हजरत ने मुझे क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस्म करो ऐसे मुझे हजरत जी ने फरमाया। तो आपके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जमजम पिया, जमजम के बाद सही के लिए गए, जैसे ही सही खत्म हुई तो वहां से हलक कराया, हलक करा के अब वापस आना था। तो जैसे ही हजरत के साथ साथ था मैं, हरम के बीच में दाखिल हुए हैं, बैतुल्लाह पे मेरी नजर पड़ी है तो मुझे पूरा ख्वाब याद आ गया। मैंने वहीं पे मिताब में मैंने हजरत जी को रोक लिया, मैंने कहा हजरत जी मैंने एक ख्वाब देखा है। हजरत जी वहीं पे खड़े हो गए, पूरी जमात साथ थी, वो साथी भी साथ थे जिन्होंने मेरे को ये इन हालत में एहराम की उसमें देख लिया था। मैंने हजरत जी का कहा मैंने ख्वाब देखा, हजरत जी ने कहा मेरी जान क्या ख्वाब देखा है। मैंने ये सारा ख्वाब सुनाया, सुनाने के बाद एहराम उठा के मैंने दिखाया, मैंने कहा हजरत जी ये सारे मेरे दाग। हजरत जी मुस्कुराए ऐसे जैसे सारा कुछ खुद पता है, खुदा की कसम मुस्कुरा के कहते हैं जई जी ये ख्वाब तो नहीं, ये तो हकीकत है, ये हकीकत देखी है आपने। वहां से चले, चलने के बाद मैंने पहला फोन अपनी वाइफ को किया, और वाइफ को करके मैंने बतलाया कि एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने अता की है। उसने पूछा क्या अता किया, मैं रोए जा रहा हूं, साथ वो भी रोए जा रही है बगैर सुने हुए, क्या अता हुआ है। मैंने कहा मेरे ये निशान मिट गए हैं, ये जो मातम के जंजीरों के छुरियों के ब्लेडों के निशान थे ये मिट गए हैं। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा बस बाकी वाकया आके बतलाऊंगा, ये बहुत बड़ी करामत जाहिर हुई है मेरे हजरत जी बेग साहब की कि मेरे जिस्म के सारे निशान मिट गए हैं। अब ये कह के उसके बाद मैंने भाई साहब को फोन किया, सईद भाई साहब को, मैंने इनको सुनाया, मैंने कहा कि ये वाकया पेश आया है। इन्होंने अपने अंदाज से बेपनाह तारीफ रब्बे करीम की और बेपनाह जनाब अली हजरत जी बेग साहब की करने के बाद कहा क्या बात है, जो इनके अल्फाज थे मुझे अब याद नहीं है, बेपनाह करके रोए भी है उसमें फोन में, और फोन में कहने के मेरे भाई अल्लाह ने तेरे पे बेपनाह एहसान फरमाया है। मैंने कहा बस मैं बता नहीं, मैं आके बतलाऊंगा आपको। अब मैं जब फोन रखा तो कुछ देर के बाद इनका फोन मेरे पास आया, सईद भाई का, और इन्होंने मुझे फोन करके कहा जहीर साहब ये कमाल हजरत जी की करामत पूरे खानदान पे जाहिर हुई है, आपके फोन के बाद मैंने हाजी साहब को कहा, ये खलील साहब बैठे हुए हैं, कि हाजी साहब आप जरा अपने निशान देखें, आप पे भी तो थे, तो ये भी मिट गए हैं, ये भी नहीं, एक भी नहीं रहा। फिर मैंने सियालकोट फोन किया छोटे भाई को, वो भी छुरियां मारता था, उससे पूछा कि देख जाके, वो शीशे में देख के उसने कहा हाँ मेरा तो अब निशान मुझे नहीं समझ, उसको नहीं था सारे वाकया का पता, उसने कहा जी मिट ही गए हैं, मैंने तो काफी अरसे से देखे नहीं थे, निशान वाकई मिट गए। इन्होंने कहा हमारे पूरे घर के ऊपर शफकत का हाथ फिर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा जिस्म कोई भी साथी देख सकता है मेरे चेहरे से ज्यादा सफेद है, बिल्कुल व्हाइट हो गया वह अल्लाह के फजलो करम से पूरा जिस्म, जब से हाथ ख्वाब में फिरा निशान भी गया। अब जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरी बीवी ने यह समझा कि ये निशान जो थे काले काले, ये काले सफेद हो गए होंगे, या निशान काले जो स्याही है ये खत्म हो गई होगी, इसका उसको तसव्वुर भी नहीं था कि ये इस हालत में। तो उसने देखा, देखने के बाद उसके बेसाख्ता ये जबान से निकला कि ये तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गए हो। मैंने कहा बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। ये वाकया अल्हम्दुलिल्लाह बतला के सुना के खुदा की कसम फिर भी रह जाता है अंदर के, ओहो कसर रह गई, हकीकत नहीं सुना सके। तो ये वाकया मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पेश आया। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा आपके लिए हजरत की इजाजत के बगैर ही, उमरे पे जब वहां से अदायगी के बाद मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो अब एक शौक सा पैदा हो गया, हजरत ने शफकत फरमाई, शफकत ऐसी फरमाई कि ये मामला हुआ, इतनी बड़ी करामत जाहिर हुई, इसकी तो समझ अभी तक भी नहीं, सच्ची बात है, आस्ता आस्ता सोच सोच के हिजाब हटते जाते हैं कि हो क्या गया। अच्छा, इसके बाद मैं ये बता दूं कि वो साथी लोग जिनके साथ मैं छुरियां मारता था और मेरे सियालकोट के थे, वो कराची के में मौजूद थे, छोड़ने के बाद ईमान लाने के बाद बड़ी कोशिश की, ईमान नहीं ला सके, तो मैं फिर उसके पास फिर गया दोबारा, उसके पास जाके वो हमारे सियालकोट घंटाघर के पास जरोशाह था, जरोशाह का बेटा था ये, और हम दोनों आपस में कराची में बड़ी छुरियां मारते थे। तो मैं फिर उसके पास गया तड़प लेके कि शायद इसको हदायत मिल जाए। तो मैंने उसको जाके कहा कि मेरे साथ अजीब वाकया हुआ है, ओ खुदा के बंदे ओ गौर व फिक्र कर, मैंने कहा ये देखो मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो उसने हाथ लगाया पूरे उस पर लगा के चौंका, चौंकने के बाद मुझे कहता हो यार आज का टेक्नोलॉजी बड़ी तेज, ये प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाती है ये भी। मैंने कहा तुम एक निशान ये जो तुम्हारा है मेरी तरह ही थे ना, एक निशान सर्जरी करा के इस तरीके से मिटा के आ जाओ। तो मैंने उस जज्बात में कह दिया कि मैं दोबारा शिया हो जाऊंगा, जा मिटा के आ। तो फिर आगे उसने मुझे ये बोला जब अल्लाह को हदायत नहीं थी मंजूर, तो आगे कहता हो तू तेरे जैसा बदकिस्मती कोई नहीं, ओए जो निशान चमकने थे ना रोजे मैशर वो भी अल्लाह ने तेरे से छीन ली है। मैंने कहा जहन्नम में जा, नहीं ईमान लाता तो ऐसी की तैसी में जा। मदीना शरीफ से शरीफ ले गए हजरत के साथ, अजीब मंजर होता है, अल्लाह की जात सारी जमात को ये तौफीक दे के हजरत के साथ उमरा हो हज नसीब हो। तो जब मदीना शरीफ से शरीफ ले गए तो हजरत ने फरमाया जमात को के तैयार होके सफेद कपड़े पहन के नीचे आ जाओ सब जने, ताकि हाजिरी देंगे। वक्त था वो मगरिब का, मगरिब के वक्त पहुंचे, मगरिब की नमाज हजरत ने खुद इमामत की वहां पे, और हम जमात को क्योंकि हो चुकी हुई थी नमाज, हो चुकी हुई थी। तो एक साइड पे मस्जिद बाबू निसा के साथ ही हजरत जी ने की इमारत, वहां पे अजीब एक मंजर, वो शोक सा होता है ना आदमी शोक शोक में सारा कुछ के अब भी कुछ अजीब मंजर महसूस हो कि अजीब अजीब हस्तियां हैं और अजीब किस्म की रोशनियां आ रही हैं मुख्तलिफ कलर की, जिनको मैं तय नहीं कर पा रहा कि ये हैं क्या। और ऐसे जैसे हजरत के लिए इस्तकबाल के लिए वो जो है वो मौजूद हैं, जैसे ही नमाज खत्म हुई है और हजरत चले हैं, पीछे पीछे जमात है और वो जनाब उन्होंने ऐसे साया कर लिया ऊपर। हजरत मस्जिद में जितनी देर रहे हैं इशा की नमाज तक, वो मैंने मुख्तलिफ रोशनियां और मुख्तलिफ अजीब कैफियत जो है वो मैं देखता रहा। अब जब नमाज से फारग हुए तो सलातो सलाम के लिए हजरत तशरीफ ले गए, पीछे पूरी जमात थी, पीछे मैं भी था। अब जैसे ही हजरत ने सलातो सलाम, हालांकि शुरते बहुत मना करते हैं भगाते हैं वहां पे, तो हजरत का अपना एक अंदाज है, एक ऐसी साइड से जाते हैं कि वहां पे खड़े हो जाते, शुरतों को नजर ही नहीं आते, असर नहीं नजर आते। तो जैसे ही हजरत सलातो सलाम पेश किया और मैंने महसूस किया कि हजरत जी दरवाजा खुला है रोजा मुबारक का और हजरत जी अंदर तशरीफ ले गए। जैसे ही हजरत जी अंदर तशरीफ लेके गए हैं तो हम देख रहे हैं जमात पीछे सारी खड़ी हुई है, हजरत जी अजीब अंदाज में सलात और सलाम पेश कर रहे हैं और हजरत जी के चेहरा मुबारक से मुख्तलिफ जगहों से श्वाएं नूर की उठ रही हैं और मैं देख रहा हूं। तो साथ एक कहने वाला मुझे कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बेग साहब के बोसे ले रहे हैं और जहां पर बोसा लेते हैं वहां से नूर बुलंद हो रहा है। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं सुना, कईयों पे पाबंदी लगाई हुई है हजरत ने, खबरदार जिस दिन मौका मिल गया हजरत हुए मूड में, अल्लाह पाक ने इनको खुश रखा, वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो एक छोटा सा और मैं इजाजत के साथ छोटा सा वाकया वो सुना के वो मैंने एक ये लिखा हुआ है हमारे एक बुजुर्गों ने हजरत जी के बारे में कुछ शेर पढ़ा था, वो मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुना दूं। यहां पे हमारे हजरत जी के कोयटे के थे, उनका वाकया तो नहीं सुनाऊंगा, उनका जब इंतकाल हुआ तो हजरत उस वक्त भी उम्रे पे तशरीफ ले गए थे, हम यहां पर थे इत्तफाक से और हमें मौका मिला हजरत जी से एहकामात लेके उनका तमाम इंतजामात जो है वो हमें नसीब हुए साथियों को, उसमें डॉक्टर अलवी साहब मौजूद हैं, इमरान मसूद थे, कराची की जमात थी, उनको गुसल दिया, गुसल के बाद वो तैयार किया और हजरत के हुक्म के मुताबिक क्वेटा भेजा। तो उनका वाकया ऐसा हुआ कि जिस साथी ने गुसल दिया उनको, वो साथी कई दिनों तक खुशबू अजीब महसूस करता रहा और जब हमने वो क्वेटा के लिए रवाना किया तो उसमें देखा कि फरिश्तों का नजूल है, बेपना फरिश्ते जो है वो कतार दर कतार जो है वो तशरीफ हजरत मक्के में बैठे हुए थे, हरम शरीफ के सामने थे और मैं फोन के ऊपर इतला दे रहा था और मैंने बतलाना था कि हजरत ऐसे ऐसे और हमने कार्गो में दे दिया, कोयटे में चले जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि हजरत जी इमामत करने लगे हैं उसकी नमाज जनाजा की, उन हस्ती की मौलाना अब्दुल गफूर साहब कोयटे वाले, हजरत की तरफ से खिलाफतनामा भी था उनके पास और बड़ी शफकत हजरत ने फरमाई, हजरत बड़ी प्यार फरमाते उन हस्ती से। तो जैसे ही मैंने देखा कि बेपना मखलूक पगड़ियां बांधी हुई हैं और वो कतार में खड़ी हो गई है और हजरत ने उनकी नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई है, और ये देखने के बाद क्योंकि सारी रात के थके हुए थे, वो रख के डेड बॉडी जमा कराने के लिए बैठे हुए थे तख्त के ऊपर, मुझे ऐसे नींद सी आ गई, उसी घनूदगी में ये मैंने सारा जो है वो महसूस किया। और ये करने के बाद मैंने फिर हजरत को फोन करके बतलाया कि हजरत इस तरीके से है, हजरत ने उसकी निशानदेही फरमाई और कहा कि जय जी मेरी सारी तवज्जो उधर ही है, सारी मैं तवज्जो उधर करके बैठा हूं, मुहर्रम के बीच में थे बैतुल्ला के सामने। और फिर मैंने पूछा हजरत वो मखलूक मैंने पहचानी नहीं जहां तक नजर जा रही थी, तो फरमाया फरिश्ते थे। ये वाकया मैं भी उस उम्रे पे गया था, बाद में उम्रे से वापस आने के बाद हमारे बाबा जी कादर बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ये यहां पे आराम फरमा रहे हैं, बड़ी शफकत बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हजरत की, मिसाली मोहब्बत, हमने उनसे अदाब सीखे हैं कराची में रहकर कि हजरत का नाम आ जाए, हजरत की कोई बात दुनिया जान एक तरफ और हजरत का कोल अपनी तरफ, इस तरीके से मोहब्बत फरमाते थे। तो मैं ख्वाब मैंने देखा कि मैंने ख्वाब में बाबा जी के पास गया हूं और बाबा जी को जाके ये सारा वाकया सुनाया है, ये करामत मैंने सुनाई है कि मौलाना अब्दुल गफूर साहब के जनाजे के ऊपर मैंने देखा है कि मौलाना अब्दुल गफूर साहब की नमाज जनाजा हजरत बेग साहब ने पढ़ाई है और पीछे फरिश्तों का नजूल देखा है। तो यह सुनने के बाद बाबा जी ने आगे से जो फरमाया मुझे पहले जबानी याद था और अब मैंने लिख के रख लिया था। मैं आपको आपने मुझे फिर फरमाया, कहते हैं औलिया इकराम पर अल्लाह की खास अनायात होती हैं और खुदाए वादाउला शरीक के इतने महबूब बंदे बन जाते हैं कि इन्हें कई तरह की रूहानी ताकतें हासिल हो जाती हैं। फिर इनमें से भी कुछ को खास अनायतें हासिल होती हैं। ये अपने कलम से कुछ लिख दें तो उसमें अल्लाह की रजामंदी शामिल हो जाती है। इनकी जबान मुबारक से कुछ निकल जाए तो अक्सर पूरा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह पाक के खास बंदे जिस किसी को नजर भरकर देख लें उसकी जिंदगी का रुख जिस अंदाज में बदलना चाहे उसे बदलने की सलाहियत रखते हैं। औलिया इकराम अपनी इन सलाहियतों को मख्फी रखते हैं और हत्तल इम्कान किसी पर जाहिर नहीं होने देते। यही वजह है कि आम लोग इन्हें नहीं पहचान पाते, लेकिन कभी कभी किसी खास मौका या वजह से इन्हें इसका इजहार करना पड़ता है। इसमें इनका मकसूद इंसानों की इसलाह होती है, अपनी जाती नुमाइश हरगिज नहीं होती। बज़ाहिर ये एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन रूहानियत कमालात करामात के समुंदर अपने अंदर छुपा रखे होते हैं, इन खजानों से भरे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी बेग साहब और हजरत जी शाह साहब हमारे पास मौजूद हैं। यौनासी ने कहा था अल्लाह तबारक व ताला मुझ समेत आप सबको इन जूतियों में बिठाए रखे और रब्बे करीम हमारी कुताहियों को दरगुजर करता रहे, हमें यह सदा ना मिले कि हम जमात से कट जाएं। सबसे बड़ा इनाम यह है कि हम जमात के साथ जुड़े रहें और इनकी शफकत हमें तमाम नलायकियों बदतमीजियों के बाद भी हम यही तलब करते हैं कि हजरत हम हैं बदकार हैं, हम पे बस शफकत की नजर ही रखी है। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत कामला वाजला नौजवान बना दे। मैंने ख्वाब में देखा हुआ है इनको काली दाढ़ी के साथ, अल्लाह करे वो मेरा ख्वाब सच्चा हो जाए। खुदा करे कि ये फिर दोबारा अल्लाह ताला इनसे बेपनाह काम ले लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह ताला ने काम किया, अल्लाह ताला का फजल हुआ, गुफ्तगू और गुफ्त अल्लाह अबूद गाजिया रखू अब्दुल्ला को बहुत भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं, होता अल्लाह तला की तरफ से। मैं पहले बात यही कर रहा था, इंसान क्या चीज है, कोई हकीकत नहीं। तो हाथ फेरने से अगर मेरे दांत दूर हो गए तो ये भी हाथ फेरने ताकि दाढ़ी स्याह हो जाए। दाढ़ी स्याह होना मकसूद नहीं है, बल्कि दाढ़ी सफेद होना बड़े शर्फ की बात। बाबा जी की चंद दुआएं हैं, माया नाज दुआएं, माया नाज, उनमें से एक दुआ ये भी है, ए अल्लाह जिससे तूने मेरी दाढ़ी के बाल शाह से सहदीन बदल दिए, इस तरह मेरा नामा माल शाही से सहदीन बदल। दुनिया हर हाल में छोड़नी है, उसमें कुम सल्लाह छोड़ गए हतीसा में तशीह आएंगे, मुर्दों जिंदा करने वाले वो भी छोड़ जाएंगे। वक्त मुकर्रर हो चुका हुआ है पैदाइश के साथ, वो बदल भी नहीं हो सकता। इसलिए जितनी भी जिंदगी है सब अल्लाह ताला के सुपुर्द है, अल्लाह ताला की दुआ करके बस अपनी रजा से हमारा माल फरमाए। जिंदगी बड़ा होना छोटा होना कोई बात नहीं है, दुनिया छोड़ने का जायका है ये हर शख्स ने चखना है, हर जीरू ने चखना है, इसमें कोई शक नहीं है। मशहूर वाक्य मूसा अलैहिस्सलाम का है, बकरे के बाल पकड़ लीजिए इतने साल उसके बाद मौत आनी आनी, उसे मुफिर नहीं, वो छूट नहीं सकती। اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے جتنے اوقات مقرر شدہ رکھے خیریت سے رکھے، اپنی نظام مندی کے ساتھ رکھے، اپنے فضل و کرم کے ساتھ رکھے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے فضل و کرم سے مالا مال ہوں. اللہم صلی علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله هو الخير آخر خير ظاهر خير باطن خير كل خير في مطلع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله محمد اجمعين يا رحمتي يا رحمة. علماء حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے چند چیزیں نوٹ کی ہیں، وقت تھوڑا ہے، یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلی دعا جو مانگنی چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں ربنا ظلمنا انفسنا یہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعا یہی ہے اور یہ سب سے پہلی دعا ہے جو شرف قبولیت بخشا گیا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کی ابتدا اسی دعا سے ہونی چاہیے یاد رکھنے کے بعد. اور جب بھی کبھی دعا مانگیں ایک دعا کبھی نہ بھولیں، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد. اے ہر نماز میں ضرور دعا مانگے، کیونکہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ہماری والدہ صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی میں ہوں اس طرح، میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک کر رہا ہے. میں دیکھا کہ رسول اکرم بڑے خوشی میں ہے. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرمائیں، آپ بڑے خوش میری دعا ہیں. تو رسول اکرم نے دعا فرمائیں اللہم اغفر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مغفرت کی دعا فرمائیں. تو والدہ صاحب فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی، اتنی ہنسی کہ میرا سر جو تھا میرے پیٹ کو جا رہا تھا. اسے ثابت ہوتا ہے میرے والدہ صاحب بہت نحیس تھی، بہت کمزور تھی. تو رسول اکرم نے کہا کہ آپ اتنی خوش ہوئی، میں یار سو آپ کی اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہے. پر سورے کا شاہ میں کہ عائشہ میں ہوں اس طرح میری والدہ صاحب ہیں، میں ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں اپنی امت کے لیے، مغفرت کی دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں. اس لیے ہر نماز میں ہر دعا مانگنی چاہیے.
اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم.